आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? मेरा नाम अमन है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 3rd, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। तो सभी बच्चे जल्दी से अपनी साइंस की बुक्स निकालिए एंड ओपन करिए पेज नंबर 24। बच्चों, जैसा कि आपको इस चैप्टर के नाम से ही पता लगता है, फाइबर टू फैब्रिक, हम अपनी डे टू डे लाइफ में फाइबर या फिर फैब्रिक का नाम कई दफा सुन चुके हैं। बच्चों, हम जो भी वस्त्र पहनते हैं, जो भी कपड़े पहनते हैं, ट्राउजर हो, शर्ट हो, ग्लव्स हो, सॉक्स हो, पैंट हो या फिर जैकेट हो, ये सभी कपड़े फाइबर यानी फैब्रिक से बने होते हैं। और ये जो फैब्रिक होता है, ये हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? ये फैब्रिक हमको हमारे एनिमल्स से मिलता है, या तो एनिमल से या फिर प्लांट से, यानी कहीं ना कहीं हमारे नेचर से ही हमें फैब्रिक ऑब्टेन होता है। तो चलिए बच्चों, पहले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6th यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स obtained from plants. You also learnt that wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece, that is hair, of sheep or yak. Silk fibers come from cocoons of the silk moth. Do you know which part of the sheep's body yields fibers? Are you aware how these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? Do you have any idea how silk fibers are made into silk, which is woven into saris? In this chapter, we shall try to find answers to these questions. तो बच्चों, जैसा कि हमने 6th क्लास यानी हमारी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि जो फाइबर्स होते हैं वो हमें ज्यादातर हमारे प्लांट्स यानी पेड़ पौधों से ही ऑब्टेन होते हैं, और उसी के विपरीत जो वुलन या फिर सिल्क फाइबर होता है वो हमको जानवरों, जीव जंतुओं, दैट इज एनिमल से ऑब्टेन होता है। अब जैसा कि इस पैराग्राफ में लिखा है कि Wool is obtained from the fleece, यानी hair, sheep माने भेड़िया, sheep और yak, भेड़ियों की body के ऊपर आपने hairy like structure fur देखा होगा, जिसको हम fur बोलते हैं। वो जो fur होता है, उसी से हमें wool मिलता है। Wool यानी वो fabric जिससे हमारे सर्दियों के कपड़े बनते हैं, यानी ऊन। आपने देखा होगा कि जब सर्दियां आती है तो हर किसी की मम्मी या फिर जो दादी होती है वो मार्केट से ऊन के गोले लेके आती है, और उसी ऊन की मदद से आपके लिए स्वेटर बनाया जाता है। बच्चों, उसी ऊन को हम बोलते हैं वूल, यानी वुलन फैब्रिक। और ये जो वुलन फैब्रिक होता है, ये शीप के हेयर से हमें मिलता है, शीप के हेयर, जिसको हम फ्लीस बोलते हैं। तो बच्चों, आप इसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए। तो बच्चों, ये तो था इस चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वूल। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स bear hair on their body. Do you know why these animals have a thick coat of hair? Hair trap a lot of air. Air is a poor conductor of heat. So you would learn in chapter number 4. So hair keeps these animals warm. Wool is derived from these hairy fibers. तो बच्चों, ये जो wool यानी जिससे सर्दियों के कपड़े बनते हैं, डेट इज वुलन फाइबर, ये हम सबको शीप, गोट, याक, इन टाइप्स के एनिमल से मिलता है। ये एनिमल्स जो कि हमको वूल प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम वूल यील्डिंग एनिमल्स बोलते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं। हेयर्स यानी बाल की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इनकी स्किन के ऊपर। क्या आपको पता है कि इनकी स्किन के ऊपर ये हेयर की कोटिंग क्यों होती है? तो इसका आंसर है कि ये जो हेयर होते हैं, ये बहुत सारी अमाउंट में एयर को यानी हवा को ट्रैप करके रखते हैं, उसको बंद करके रखते हैं अपने अंदर। और हमको पता है कि जो एयर है, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी वो हीट को कंडक्ट नहीं करवाता। अब जैसा कि एयर प्रेजेंट होगी, उसकी वजह से एनिमल की बॉडी गर्म रहेगी। एनिमल की बॉडी में जो हीट प्रेजेंट होगी, वो उसकी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगी ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ एयर इन हेयर्स, दैट इज वुलन। सो नाउ एक्टिविटी नंबर 3.1, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट? बच्चों, आपने इस एक्टिविटी में क्या करना है? ये एक्टिविटी कहती है कि आपने अपनी बॉडी के ऊपर अलग अलग जगह पर जो अलग अलग हेयर्स प्रेजेंट है, आपने क्या करना है, उनको टच करके उनको फील करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके हेड के ऊपर, आपकी बाजुओं यानी आर्म्स के ऊपर, आपके हाथों के ऊपर यानी हैंड्स के ऊपर, उसी तरीके से आपके पैरों के ऊपर, आपकी लेग्स के ऊपर। तो आपने इन सभी हेयर्स को फील करके, टच करके आपने क्या करना है, उनको डिफ्रेंशिएट करना है कि वो कौन से सॉफ्ट हेयर है और कौन से हार्ड हेयर है यानी कोर्स हेयर। लाइक अस, द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म इट्स फ्लीस। फर्स्ट द कोर्स बियर्ड हेयर एंड सेकेंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफ स्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो बच्चों, जिस प्रकार से हम ह्यूमंस यानी इंसानों की बॉडी के ऊपर भी छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट है और इनके अंदर बहुत डिफरेंस है, कई पार्ट्स में सॉफ्ट हेयर प्रेजेंट है, कई पार्ट्स में हार्ड हेयर प्रेजेंट है, उसी तरीके से जो शीप की बॉडी होती है यानी इनके ऊपर जो थिक कोटिंग होती है हेयर्स की, इनके अंदर भी बहुत ही ज्यादा वैरायटी है। जैसे कि कई पार्ट्स में कोर्स बियर्ड हेयर यानी बहुत ही ज्यादा हार्ड हेयर प्रेजेंट होते हैं और ठीक स्किन के पास सॉफ्ट अंडर हेयर प्रेजेंट होते हैं, यानी जो स्किन के ठीक पास में हो। और ये जो फाइन हेयर होते हैं यानी जो ठीक स्किन के पास होते हैं, दिस इज द बेस्ट हेयर फॉर मेकिंग ऑफ वूल। बच्चों, उसी तरीके से शीप यानी भेड़िए की कुछ ऐसी प्रजाति होती है जिनके पास फाइन यानी सॉफ्ट अंडर हेयर प्रेजेंट होते हैं। कहने का मतलब, उनकी बॉडी के ऊपर थिक हेयर की ग्रोथ ही नहीं होती। और बच्चों, जो ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर फाइन अंडर हेयर प्रेजेंट है, ऐसे ही पेरेंट्स को चूज किया जाता है ताकि वो ऐसी शीप को बर्थ दे जिनकी स्किन के ऊपर सॉफ्ट अंडर हेयर प्रेजेंट हो। और ये जो प्रोसेस है पेरेंट्स को सिलेक्ट करने का, ताकि उनके जो स्पेशल कैरेक्टर्स है वो उनके आगे बच्चों में ट्रांसफर हो जाए, इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। जैसा कि इस प्रोसेस के अंदर जो एक पर्टिकुलर शीप है यानी पेरेंट शीप को हम सिलेक्ट करते हैं जिसकी बॉडी के ऊपर फाइन अंडर हेयर हो, हम उसको सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टर कि इसके बॉडी के ऊपर फाइन अंडर हेयर है, तो यानी ये जो अपना ऑफस्प्रिंग यानी जो अपना बेबी प्रोड्यूस करेगा उसके पास भी सेम कैरेक्टर ट्रांसफर होगा, तो इसीलिए हम ऐसी ही शीप को सिलेक्ट करेंगे। और ये जो प्रोसेस है इसको बोल देते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। नेक्स्ट टॉपिक, एनिमल्स दैट यील्ड वूल। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। तो वूल इज कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शीप वूल, याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, मोहेयर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंगोरा गोट्स फाउंड इन हिली रीजन्स सच एज जम्मू एंड कश्मीर, वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर, द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, इट इज वूवन इन टू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स, द फर दैट इज हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज एज वूल, लिलामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो वील्ड वूल। जैसा कि हमें पता है कि हमारी कंट्री के अंदर शीप की अलग अलग प्रजाति डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट है, उसी के साथ हमें ये भी पता है कि जो फ्लीस ऑफ शीप यानी शीप के ऊपर जो थिक कोटिंग ऑफ हेयर है वो सिर्फ एक मात्र सोर्स नहीं है वूल का, हमें वूल फैब्रिक और भी कई सोर्स से मिलता है। लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर जो अवेलेबल वूल होती है वो ज्यादातर शीप वूल ही प्रेजेंट होती है। जो याक वूल है वो ज्यादातर हमको तिब्बत और लद्दाख जैसे प्लेसेस में मिलती है, बिकॉज वी नो डैट जो याक एनिमल है वो ज्यादातर हमको तिब्बत लद्दाख इन एरिया में ही सर्वाइव करते हैं। उसी के साथ मोहेर हमको एंगोरा गोट से मिलता है और ये एंगोरा गोट्स ज्यादातर जम्मू और कश्मीर जैसी जगहों पर मिलते हैं। जो वुलन फैब्रिक है वो सिर्फ शीप से ही नहीं मिलता, वो हमको गोट से भी मिलता है, यानी गोट के ऊपर, गोट माने बकरी के स्किन के ऊपर भी जो फर प्रेजेंट होते हैं उनसे भी हमको वूल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जो कश्मीरी गोट यानी कश्मीरी बकरी होती है उनके जो अंडर फर हैं वो सॉफ्ट होते हैं, तो वहां से हम वुलन निकालते हैं, और कश्मीरी गोट से निकाला हुआ जो वुलन होता है उससे हम शॉल तैयार करते हैं, शॉल जिनको हम बोलते हैं पश्मीना शॉल्स। आपने शॉल के बारे में तो सुना ही होगा, सर्दियों में जो सभी के सभी ओढ़ते हैं। इसी के साथ कैमल यानी ऊंट जो कि राजस्थान डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, इसकी बॉडी के ऊपर भी जो हेयर प्रेजेंट होते हैं सॉफ्ट हेयर, इनसे भी हमको वूल प्राप्त होता है। तो बच्चों ये अलग अलग एग्जांपल्स थे कि शीप के अलावा और भी एनिमल्स से हमको वूल मिलता है, सो देयरफॉर देयर आर सो मेनी सोर्सेस ऑफ वूल। तो बच्चों आगे है एक्टिविटी 3.2, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हूज हेयर इज यूज्ड एज वूल, स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक, इफ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम द वंस गिवन इन दिस बुक, फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप गोट कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेजेस ऑफ आवर कंट्री। तो बच्चों ये एक्टिविटी ईजी है, आपने इसमें क्या करना है एक स्क्रैप बुक लेनी है और आपने उन एनिमल्स की पिक्चर्स कलेक्ट करनी है जिनके हेयर से हमको वूल मिलता है यानी वुलन फैब्रिक मिलता है, आपने उन पिक्चर्स को अपनी स्क्रैप बुक के ऊपर पेस्ट करना है और उसके बाद उस पर्टिकुलर एनिमल को आपके लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है आपने वो नेम भी वहां पर लिखना है और आपकी कंट्री के दूसरी भाषाओं में उसको किस नाम से पुकारा जाता है आप सबने वो भी सर्च करना है। तो ये एक्टिविटी तो आपके पर्सनल बेसिस पे है, ये आप खुद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी एक्टिविटी 3.3 पढ़ते हैं। प्रोड्यूस आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल। यूज डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स। अगेन स्टूडेंट्स, अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी एक्टिविटी। आपने इसमें क्या करना है, हमारे इंडिया यानी हमारे देश का मैप लेना है, नक्शा लेना है, और उसमें क्या करना है, आपने उन जगह यानी उन प्लेसेस को मार्क करना है जहां पर ऐसे एनिमल्स मिलते हैं जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं, वूल फाइबर यानी वुलन फाइबर। जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल्स पढ़े थे कि अंगोरा गोट हमको जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है, तो हम क्या करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर को मार्क कर देंगे कि अंगोरा गोट हमको इस पर्टिकुलर जगह पे मिलते हैं और क्या प्रोवाइड करते हैं, वूल। उसी तरीके से याक हमको तिब्बत या फिर लद्दाख जैसे रीजन में मिलते हैं, तो हम वहां पर मार्क लगा देंगे और क्या बोलेंगे कि हमको याक इन रीजन में मिलता है और वो हमको वूल प्रोवाइड करता है। तो इसी तरीके से ये आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड, देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। If you travel to the hills in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. Sheep are herbivores and prefer grass and leaves. Apart from grazing sheep, rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes, that is material left after taking out oil from seeds, and minerals. In winter, sheep are kept indoors and fed on leaves, grain and dry fodder. तो बच्चों, वूल को प्राप्त करने के लिए यानी इस फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए हमें शीप को रियर करना पड़ता है। रियर माने एक ऐसी मशीन होती है जिससे हम शीप की बॉडी से सारे के सारे हेयर को रिमूव कर देते हैं, उनके हेयर्स को कट करके और उसको वूल बना देते हैं, और इस प्रोसेस के बारे में हम डीपली इस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, कि हम किस तरीके से उसको रियर करते हैं एंड उसको ब्रीडिंग करते हैं। अगर आप हिली एरियाज में, जो कि एरियाज यहाँ पे लिखे हुए हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश जैसे प्लेसेस पे अगर आप जाएंगे, तो वहां पर आपको ये दिखेगा कि शेफर्ड्स जो होते हैं वो अपने भेड़ियों को यानी अपने शीप को ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं। ग्रेजिंग माने चरना। शेफर्ड्स उनको बोलते हैं जो कि भेड़ियों को पालते हैं। वो क्या करते हैं, अब उन्होंने जब भेड़ियां पाली हुई हैं तो वो ग्रुप में पालते हैं। तो आपने देखा होगा कि हिली एरियाज में, हिल स्टेशंस में ज्यादातर जो शेफर्ड्स होते हैं वो अपने भेड़ियों को चराने के लिए बाहर खुले मैदान में लेके जाते हैं, क्योंकि जो शीप एनिमल है वो हर्बीवोर्स है यानी वो टोटली डिपेंडेंट होता है, ग्रास और अन्य पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और इसके अलावा यानी शीप को चराने के अलावा वो उनको बहुत सारे अलग फूड मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दाल, मकई के दाने, जवार या फिर ऑयल केक्स या फिर अदर मिनरल्स। लेकिन जब सर्दियों का टाइम आता है तो वो शीप को इंडोर्स यानी बंद रखते हैं और उनको ज्यादातर पत्तियां, ग्रेन और अलग सूखे पदार्थ प्रोवाइड करते हैं। शीप आर रियर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आर कंट्री फॉर वूल। टेबल 3.1 give the names of some breeds of sheep reared in our country for producing wool. The quality and texture of the fibers obtained from them is also indicated in the table. तो बच्चों, जैसा कि टेबल नंबर 3.1 में लिखा गया है कि शीप की कौन सी प्रजाति हमारे कंट्री के कौन से पार्ट्स में चराई जाती है या फिर उनकी रियरिंग वहां पर होती है, और इसी के साथ अलग अलग प्लेसेस पे जो शीप्स प्रेजेंट है उनके फाइबर की जो क्वालिटी या फिर जो टेक्सचर है वो भी अलग होता है, और इस सब की इंफॉर्मेशन आपको टेबल 3.1 में दी गई है। जैसे ब्रीड का नाम है लोही, इसकी क्वालिटी ऑफ वूल क्या है, गुड क्वालिटी वूल, और ये ज्यादातर कहाँ पाई जाती है ऐसी प्रजाति, राजस्थान और पंजाब। उसी तरीके से रामपुर बुशहर नाम की जो प्रजाति है वो ब्राउन फ्लीस प्रोड्यूस करती है, और ये हमको उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश जैसी जगह पर मिलती है। उसी के आगे नली, बाखरवल, मरवाड़ी या फिर पतनवादी, ये अलग अलग प्रजातियां हैं जिसकी इंफॉर्मेशन आपको टेबल 3.1 में दी गई है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी which yields good quality wool in large quantities. As mentioned earlier, these sheep are selectively bred, with one parent being a sheep of good breed. Once the reared sheep have developed a thick growth of hair, hair is shaved off for getting wool. तो बच्चों, कुछ ऐसी प्रजातियां भी होती है sheep की जो कि thick coat of hair produce करती है, और ऐसी प्रजातियां जो होती है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी और लार्ज क्वांटिटी में वूल प्रोड्यूस करती है। ऐसी प्रजाति में हम क्या करते हैं, सिलेक्टिवली ब्रीडिंग। हमने पहले पढ़ा था कि इस टाइप की प्रजातियां कैसे प्रोड्यूस होती है, बाय द हेल्प ऑफ सिलेक्टिवली ब्रीडिंग प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के थ्रू जब शीप प्रोड्यूस होती है तो वो अच्छी क्वांटिटी और अच्छी क्वालिटी की वूल हमको प्रोवाइड करती है। सो नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, कि हम किस तरीके से फाइबर्स को वूल में कन्वर्ट करते हैं, हमारी फिनिशिंग प्रोडक्ट जो है डेट इज वूलन फैब्रिक उसको कैसे बनाते हैं। द वूल विच इज यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल्स इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस which involve the following steps. yani jo bhi hum sweater bunte hain, aapne ghar mein dekha hoga ki dadi ma sabki un leke aati hai bazaar se aur usse sweater bunti hai, knitting mane bunna ya fir shawl bunti hai. to ye jo finished product hai yani ki un, ye kin cheez se bana hota hai yani iska kya process hai, to hum usko step by step padhenge. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टेप फर्स्ट। द फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, जैसा कि आप फिगर 3.8 ए पार्ट में देख सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शियरिंग। तो बच्चों, आप सभी पेंसिल लेके इस स्टेप को मार्क कर लीजिए, स्टार्टिंग की 4 लाइंस, कि शियरिंग को क्या बोलते हैं। यहां लिखा है कि जो शीप की फ्लीस है यानी जो थिक कोटिंग ऑफ हेयर है उसको रिमूव कर दिया जाता है एक पतली सी स्किन की लेयर के साथ, उसको बॉडी से रिमूव कर देती हैं। और ये जो रिमूवल का प्रोसेस है ऑफ थिक कोटिंग ऑफ हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप, इस प्रोसेस को बोला जाता है शियरिंग। मशीन्स सिमिलर टू दोस यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज टू शेव ऑफ हेयर, यूजली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर, दिस एनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। और गर्मियों के टाइम में ऐसी कई सारी मशीन्स होती है जिसको इस्तेमाल करके शीप की बॉडी के ऊपर से सारे के सारे हेयर को शेविंग कर देती हैं, जैसा कि बार्बर्स हमारे हेयर्स के ऊपर करते हैं, उसी प्रकार से शीप की बॉडी के ऊपर से भी हेयर को रिमूव कर दिया जाता है बाय यूजिंग मेनी मशीन्स। बेसिकली ये काम ज्यादातर हॉट वेदर में किया जाता है, यानी गर्मी के मौसम में, क्योंकि ऐसे मौसम में शीप का सरवाइव होना मुश्किल हो जाता है। अब आपको पता है, अगर आप भरी गर्मी में स्वेटर पहन के बैठेंगे तो क्या आप बीमार नहीं होंगे? तो इट इज सिंपल, गर्मियों के मौसम में अगर मैं रजाई ओढ़ के बैठ जाऊं या फिर गर्म कपड़े, सर्दियों वाले कपड़े पहन के बैठूं, तो मैं तो बीमार हो ही जाऊंगा। तो उसी तरीके से गर्मियों के मौसम में अगर शीप की बॉडी के ऊपर वुलन फाइबर होगा, वुलन फैब्रिक की प्रोडक्शन होगी, तो वो ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो उसको सर्वाइव करवाने के लिए हम क्या करते हैं, उस कोट ऑफ हेयर को रिमूव कर देते हैं, ताकि उसके ऊपर जो एक शील्ड, एक लेयर बनी हुई थी, वो रिमूव हो जाए और उसको कोल्ड फील हो, यानी उसकी बॉडी को ठंडक पहुंच जाए। यही जो हेयर होते हैं, ये वुलन फाइबर्स को प्रोवाइड यानी प्रोड्यूस करते हैं। अब इन हेयर से जो मिला हुआ वुलन फाइबर होता है, इसी को आगे फर्दर हम मशीन्स के थ्रू किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, वुलन यार्न में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जैसा कि जब आप अपने बाल कटवाने नाई के पास जाते हैं, क्या कभी आपको दर्द होता है, क्या कभी आपको पेन फील होता है जब नाई आपके बाल काट रहा होता है? उसी प्रकार से जब हम शीप की बॉडी से उस फाइबर को हटाते हैं, उसको रियर करते हैं यानी शियरिंग प्रोसेस करते हैं, तो शीप को भी कोई पेन नहीं होता। इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेव हिज बियर्ड। उसी प्रकार से शियरिंग डज नॉट हर्ट द शीप। डू यू नो व्हाई द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड? ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डस। क्या आपको पता है कि जो हमारी स्किन की जो सबसे अपरमोस्ट लेयर है, वो डेड यानी मरे हुए सेल से बनी हुई है, क्योंकि वहां पे जो हेयर प्रेजेंट होते हैं, अगर हम उनको काट यानी कट भी कर दें, तो उसके बाद भी कुछ टाइम बाद वो दोबारा से ग्रो हो जाते हैं। तो बच्चों, ये तो था शियरिंग स्टेप, जिसको हम बोलते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट। अब हम पढ़ते हैं स्टेप नंबर सेकंड। द शियर्ड स्किन विद हेयर इज थॉरली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। दिस इज कॉल्ड scouring. Nowadays, scouring is done by machines. You can see in figure 3.8, B and C part. तो बच्चो, step second में क्या होता है? Scouring नाम से process perform करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? Sheep की body से जो हमने woolen fiber, यानी woolen का fabric हमने निकाला है, उसको अच्छे तरीके से machines के अंदर wash किया जाता है, ताकि उसके अंदर प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल या जो धूल मिट्टी प्रेजेंट है, उसको हम रिमूव करके उसको फ्रेश वुलन में प्रोड्यूस कर दें। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्कोरिंग। तो बच्चों, ये हमारा स्टेप सेकंड था। अब हम स्टेप थर्ड पढ़ते हैं। आफ्टर स्कोरिंग, सॉर्टिंग इज डन। द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। इस स्टेप में क्या होता है, जब हमने अच्छे तरीके से हेयर्स को वॉश कर लिया, तो उसके बाद हम ऐसी फैक्ट्रीज में उनको हम सेंड कर देते हैं, जहां पर उन हेयर्स की सॉर्टिंग यानी डिफरेंशिएशन होता है, जहां पर अलग अलग टेक्सचर, अलग अलग कलर के हेयर्स को सेपरेट किया जाता है, जिस प्रोसेस को बोला जाता है सॉर्टिंग। So next is step number fourth. The small fluffy fibers called burrs या फिर burrs are picked out from the hair. These are the same burrs या burrs which sometimes appear on your sweater. The fibers are scoured again and dried. This is the wool ready to be drawn into fibers. तो बच्चों, एक बार हमने washing कर ली, washing के बाद हमने अलग अलग टेक्सचर के हेयर्स को हमने सेपरेट कर दिया, उसके बाद इन हेयर्स के ऊपर, इन फाइबर के ऊपर छोटे छोटे फ्लफी फाइबर अपीयर हो जाते हैं, जिसको हम बुर बोलते हैं। आपने घर में सुना होगा, जब स्वेटर काफी पुराना हो जाता है या फिर स्वेटर को धोने के बाद उसके ऊपर बुर लग जाती है, यानी छोटे छोटे उसी में से जो फाइबर होता है वो थोड़े थोड़े निकल के छोटे छोटे सर्कुलर गोल गोल बॉल्स बना लेते हैं, उनको बोलते हैं बुर। तो इस प्रोसेस में उस बुर को रिमूव किया जाता है। रिमूव करने के बाद फाइनली वो एक ऐसी कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम इजीली फाइबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ स्टेप नंबर 5th। नाउ द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। इस स्टेप में क्या करते हैं, अब हमें पता है कि जो फाइबर्स होते हैं जो कि शीप की बॉडी से मिलता है वो बेसिकली ब्लैक, ब्राउन या फिर वाइट ही कलर का मिलेगा, क्योंकि गोट या फिर शीप इन्हीं कलर के होते हैं। लेकिन जो हमारे कपड़े या फिर जो फैब्रिक होता है वो तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, तो वो कैसे मिलते हैं? हम क्या करते हैं, जो फाइनल कंडीशन में हमें फाइबर ऑब्टेन हुआ इतनी प्रोसेसिंग के बाद हम क्या करते हैं, उसको डाई करते हैं यानी कलरिंग करते हैं। डाई लगाने के बाद वो अलग अलग कलर के फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो नाउ स्टेप नंबर 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इनटू वूलन क्लोथ। तो इस स्टेप में क्या करते हैं, फाइबर को स्ट्रेट यानी सीधा किया जाता है, कॉम्ब करके उसको रोल करके यार्न यानी ऊन के गोले बनाए जाते हैं। जो लॉन्गर फाइबर है उनसे स्वेटर बनाया जाता है ऊन की मदद से, और जो छोटे फाइबर है उनको स्पन करके वोवन किया जाता है यानी वुलन क्लोथ में कन्वर्ट किया जाता है। तो बच्चों ये सारा प्रोसेस था कि किस तरीके से फाइबर को वूल में कन्वर्ट किया जाता है। और ये छोटा सा प्रोसेस आपको इस फिगर के ठीक नीचे एक फ्लो चार्ट में भी नजर आ रहा होगा। शियरिंग, आफ्टर दैट स्कॉरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बुर्स, आफ्टर दैट डाइंग एंड रोलिंग। तो ये आपके सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वुलन है। अब फिगर नंबर 3.8 में भी देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फाइबर्स को वूल में कन्वर्ट किया जाता है। तो आज आप सब जान ही गए होंगे कि आपके घर में जो ऊन के गोले आते हैं वो कितने प्रोसेसिंग के बाद बनके तैयार होते हैं। आपको इन सब का प्रोसेस तो अच्छे से समझ आ ही गया होगा। तो बच्चों ये तो आज हमने पढ़ा कि वूल क्या होता है, वूलन फैब्रिक क्या होता है और किन किन एनिमल से ये हमको प्रोवाइड होता है यानी ऑब्टेन होता है। उसी के साथ हमने पढ़ा कि इन एनिमल से ऑब्टेन हुए जो हेयर्स होते हैं, जो फाइबर होते हैं, इनको हम किन तरह से, किन प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए वूल यानी रियल वूलन फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। आपका होमवर्क है, आपने चैप्टर की अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है और इन सभी डेफिनेशंस को लर्न करना है जो कि हमने आज के चैप्टर में पढ़ी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।